Motion. अव्यक्त बापदादा की फसलें मुलाकात ग्रुप नंबर एक। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो, जब क्या चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, पा लिया जो था पाना। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत था या आप सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आई। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना यह परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो, या स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो क्या सुना? बाबा कहते हैं, सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मन का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक है मन का गीत, एक है मुख का गीत। पापा ने कहा ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं है। दिल से कहो क्या
मेरा बाबा,
मुख से नहीं। केवल मुख से कहो वो अच्छी बात है, परंतु वो प्राणों की गहराई से निकलना चाहिए, जैसे भक्तों का आर्तनाद निकलता है अंदर से, अंतरतम से। तो आपका गीत कैसा है? ये मन का गीत है, दिल का गीत है। एक है मुख का गीत। मुख के गीत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुख का गीत सब नहीं गा सकते, सबकी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, परंतु मन का। बाबा कौन सी आवाज सुनता है? मन की आवाज, दिल की आवाज। ये दिल की आवाज की जो भाषा है वो कैसी है, उसमें भाषा का भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि बाबा तक क्या पहुंचता है, वाइब्रेशंस जाते हैं। अगर कोई तेलुगु में बाबा को याद कर रहा है तो बाबा कौन सी भाषा में सुनता है? गुजराती में कोई बाप को याद करता है तो कौन सी भाषा में बाप सुनता है? क्या बाबा तक भाषाएं पहुंचती है? एक इंग्लिश में, अंग्रेजी में बाबा को याद कर रहा है, एक तेलुगु में याद कर रहा है, एक तमिल में बाप से बात कर रहा है, एक मलयालम में बात कर रहा है, एक हिंदी में बात कर रहा है, बाबा की अपनी भाषा में। तो बाबा को लगेगा कि ये हिंदी में बात करने वाला तो मुझे ज्यादा पसंद है, तुरंत डायरेक्ट मेरे ही शब्द है, जैसे मैंने सीखा है बस वैसे ही बोल रहा है, वही शब्द है, भाव भी वही, शब्द भी वही। तो किसके बोल और किसके शब्द और किसके भाव और भावनाएं उसके पास जल्दी पहुंचेंगे? ये इंग्लिश बोलने वाला तो थोड़ा समझ में भी नहीं आती इंग्लिश, अब ऐसे बोलेगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़े डिफिकल्ट है। बाबा के पास पहुंचता क्या है? बाबा के पास खाली वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, भाषाएं थोड़ी पहुंचती है, शब्द नहीं जाते हैं। वो तो साइलेंस वर्ल्ड है जहां वो है, वहां मूवी भी नहीं है, साइलेंस वर्ल्ड है। बाबा के पास भावनाएं पहुंचती है। हम भोजन करते हैं तो बाबा भगवान को भोजन अर्पित करते हैं। वो भोजन तो केवल निमित्त है, अर्पण तो भावनाएं करनी है। वो भोजन थोड़ी स्वीकार करता है, ये तो भावनाएं उस तक पहुंचती है, वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते हैं। जो भाव और भावना है, वो भावना का भूखा है, भक्ति में उसे भावना का भूखा कहा गया है। यह मन का गीत है, मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मन से। बाइबल में एक वाक्य है, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डू द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो केवल कहते रहता है हे प्रभु, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, परंतु मेरे बाप की जो मत है, श्रीमत है, डायरेक्शन है, डिक्टेट है, ही दैट डूएथ द विल, उसकी जो इच्छा है, चाहना है, ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, केवल वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी नहीं, केवल मुंह से कहने वाले। तो ये सौदा है दिल का, ये सौदा है मन का, भावनाओं का, केवल वाणी का नहीं, केवल शब्दों का नहीं, केवल ध्वनि का नहीं, केवल स्वर का नहीं, परंतु मन का गीत, मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर जो दिल का गीत होता है वो सहज है, जैसे प्रकृति में सब कुछ सहज है वैसे सहज है, जैसे पंछी गीत गाते हैं, जैसे आसमान से बारिश गिरती है, कितना सहज, वैसे सहज वो गीत निकले। तो लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं, सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर आप प्राप्ति होती है तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। कौन सा शब्द कहा बाबा ने, आर्टिफिशियल खुशी, एक है रियल एक है आर्टिफिशियल, एक है सच्ची और एक है झूठी खुशी। झूठी खुशी पर किस किस से मिलती है, या फिर सच्ची खुशी और झूठी किस खुशी में क्या अंतर है? रियल हैप्पीनेस, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, ये अल्प, आर्टिफिशियल अर्थात अल्पकाल की, वो सदाकाल की। ये और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस
सत्य अविनाशी,
विनाशी अविनाशी, एक ही है अल्पकाल और सदाकाल। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस वो सच्च, अच्छा, सत्यता के आधार से जो खुशी है वो स्थायी खुशी है, अविनाशी खुशी है। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस
उसके लिए मेहनत है,
मेहनत बहुत ज्यादा है, कुछ करना पड़ता है इसमें बहुत ज्यादा,
दिखावे के लिए,
वो दिखावे वाली खुशी है, वो अंदर की खुशी नहीं है। अंदर से व्यक्ति दुखी है पर दिखावा कर रहा है, एक आडंबर है कि मैं खुश हूं, वो है आर्टिफिशियल हैप्पीनेस। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का आधार क्या क्या है? आर्टिफिशियल चीज है जैसे नहीं, बहानेबाजी नहीं, नाम, हमारा बहुत प्रशंसा हो गई, बहुत प्रशंसा हो रही है, और उस प्रशंसा के आधार पर जो है खुशी का अनुभव हो रहा है, बहुत तारीफ, बहुत प्रशंसा, बहुत मान मिल रहा है, बहुत सत्कार हो रहा है, उससे जो खुशी मिल रही है,
मैं खुश हूँ सिद्ध करना
और तो नाम मान और शान से प्राप्त जो खुशी है वो आर्टिफिशियल है। वस्तुओं से जो प्राप्त खुशी है, साधनों से जो प्राप्त खुशी है वो आर्टिफिशियल है। आज साधन है कल नहीं है, आज व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त खुशी, आज वो व्यक्ति है तो हम खुश, आज वो नहीं है तो हम दुखी। व्यक्ति, वस्तु, साधन, पद, पद के आधार पर प्राप्त खुशी, आज पदा पद पर है तो खुश, कल कोई और है तो हम दुखी। तो ये भी एक कृत्रिम कृत्रिम खुशी है, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का आधार खाना पीना। आज पंच पकवान, 56 प्रकार के भोग है, कल सुखी रोटी तो दुखी, भोजन देखते ही मूड ऑफ। कहा कुछ नहीं किसी से,
भूख
लगी थी परंतु भोजन देखते ही भूख खत्म हो गई। सोचा कहीं और कहीं कुछ मिल रहा है तो देखते हैं, किसी ने कुछ तो बनाया ही होगा। तो भोजन कर पर आधार जो खुशी है, अच्छा भोजन अगर मिले बहुत अच्छा बढ़िया तो बहुत खुशी होती है, ब्राह्मण जीवन का आनंद आ जाता है। जैसे ब्रह्मा भोजन के अंदर ही अंदर महिमा गाने लगते हैं, क्या ब्रह्मा भोजन है, वाह, संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति। और सूखी रोटी हो,
अच्छा भोजन मिले तो बाबा कितना ख्याल रखता है,
कितना ख्याल रखता है, बाबा की महिमा, बाबा के गुणगान, योग भी पावरफुल लगता है उस दिन थोड़ा। बाबा की महिमा गाते गाते, वाह क्या भोजन की।
भोजन के टाइम महिमा गाते हैं, अमृत वेला उठते नहीं तब।
उस दिन दादी सुना रहे थे ना हॉस्पिटल में, मुंबई में जब थे एक ही कमरा था, बीच में पर्दा, इधर कोर्स और उधर बाथरूम भी उधर, नहाने का भी उधर, और उसी के बाजू में किचन, सब कुछ वही। बेकरी पार्ट में जो दाल थी वो दाल में मुश्किल से कोई दाना दिखता था, एक या दो, बाकी सारा पानी।
आलू आलू
हमारे खुशी का आधार भोजन है। तो भोजन हमारे खुशी का आधार नहीं है, बाबा जो खिलाए उसमें संतुष्ट, जैसा भी है उसमें संतुष्ट। आज सब कुछ है तो भी ठीक, कल कुछ ना होगा तो भी ठीक, और प्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव हो, वरदान था कभी। तो सूखी रोटी भी नरम है, नरम लगी, व्यवस्था अच्छी हो, एकोमोडेशन व्यवस्था पर अवस्था निर्भर। कोई ध्यान रखने वाले हैं बहुत सारे तो सब कुछ अच्छा, तो वो सब कौन सी खुशी है, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस। हमारी खुशी का आधार क्या है, ये तो था आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का आधार। सच्ची खुशी का आधार क्या है, नशा, समझ, ज्ञान, योग, तपस्या, धारणाएं, मर्यादाएं, त्याग, तपस्या, सेवा, ये सारी सच्ची खुशी का आधार है। जिसके जीवन में ये सब नहीं है फिर भी अगर वो खुश दिख रहा है तो समझ लो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। और जो जितनी खुश अंदर से नहीं रहता है वो उतना ही अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत हंसना होना और बहुत कुछ कुछ दिखावा करना, ये खुशी नहीं है। खुशी तो आंतरिक अवस्था है। खुशी खुश कौन है, जो ज्ञान चिंतन में है वो खुश है, जो तपस्वी है वो खुश है, जो योगी है वो खुश है, जिनका जीवन में त्याग और तपस्या है वो खुश है। जगदीश भाई से किसी ने पूछा ना, मुझे खान पान की बहुत इच्छा है परंतु मैं सेंटर पर रहना चाहती हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था, वो तो है पर बिना त्याग को अपनाए तपस्वी जीवन नहीं जिया जा सकता। बिना त्याग किए तपस्या हो ही नहीं सकती। अगर हम तपस्या कर रहे हैं परंतु उसमें त्याग नहीं है तो वो तपस्या सच्ची तपस्या नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, और जहां त्याग नहीं है, जहां तपस्या नहीं है, ऐसी जो सेवा है वो कभी सफल भी नहीं हो सकती। तो हमारी खुशी का आधार त्याग है, योग है, तपस्या है। हमारी खुशी का आधार सेवा है। कैसी सेवा, निस्वार्थ सेवा, बेहद की सेवा। हमारी खुशी का आधार ईश्वरीय नशा है, अलौकिक नशा है, यह स्मृति है कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं। आज बाबा ने पूछा ना, भविष्य की का जो नशा है वो हमारी खुशी का आधार है। तो ये सब है सच्ची खुशी। और यहाँ बाबा कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे लेकिन रह नहीं सकते। और आप तो सदा खुश रहते हो, या कभी प्रश्न पूछा कि सदा खुश रहते हो या कभी कभी, जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा का क्या गीत था? पाना था, पा लिया जो था पाना। यह सिर्फ ब्रह्मा बाबा का गीत है या सबका? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर ना आए। थोड़ी भी दुख की लहर आती है तो क्या समझो?
कहा तो चेकिंग माया का है,
माया तो कवार कहीं ना कहीं हो रहा है।
कहा तो कहा है अंदर,
और दुख की अनुभूति हो रही है। ब्राह्मण जीवन में सब कुछ करते हुए श्रेष्ठ अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे, सारी धारणाएं और मर्यादाओं का पालन करने के बाद भी
पिछला हो जाए,
दुख की लहर कभी कभी आ जाती है। पिछला बोझ है। अच्छा चलो, और कर्म भोग और भविष्य का छोड़ के बताओ, ये दो कारण नहीं बताना।
ये
पूछा पुराने हिसाब किताब और भविष्य में पद का मैं पद ही ऐसा, ये दो जो है ना, ये दो कारण छोड़कर बताओ। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, आज्ञालंघन हो रहा है। एक तो माया का कहीं ना कहीं सूक्ष्म वार हो रहा है जिसे हम पहचान नहीं सक रहे कि ये माया है। पहचान तो लिया परंतु इतनी शक्ति नहीं है अंदर की उसको वो हमारा शिकार कर रही है, वो हमसे खेल रही है, हमें उससे खेलना है। माया खिलौना है, कहा ना संडे, वो खिलौना है, वो शिकार है, उसका शिकार तुम्हें करना है। और कहीं ना कहीं अपवित्रता जरूर है, कहीं ना कहीं देह दृष्टि है, कहीं ना कहीं लगाव है, कोई ना कोई झुकाव है, कोई ना कोई आसक्ति है, किसी ना कोई ना कोई व्यर्थ बुद्धि में चल रहा है, कोई ना कोई देहाभिमान का सूक्ष्म रूप है जो कि दुख ही बना रहा है। नियम पर नहीं चलते, वही नियम मर्यादा है, श्रीमद आज्ञा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भंग हो रहा है, वो ढूंढना है कहा क्या हो रहा है। और अमृत वेला श्रेष्ठ, इस तरह की चेकिंग की जा सकती, क्योंकि खुद को खुद ढूंढने के लिए, खुद को खुद देखने के लिए बहुत अच्छी पवित्रता की आवश्यकता है। जितनी प्यूरिटी की पावर हमें ज्यादा है उतनी ही हम स्वयं की चेकिंग अच्छी कर सकते हैं। जितनी प्यूरिटी, क्योंकि अपवित्रता के अगर संकल्प है तो वो संकल्प भी बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, फिर ये जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है इनको हम देख नहीं पाते। इसके लिए विकारों के जो संकल्प है, देहभान के जो संकल्प है, कल गाया ना बाबा ने प्रीत बुद्धि अर्थात, ये प्रीत की यात्रा है। प्रीत बुद्धि अर्थात जिनका देह से लगाव नहीं है, प्रीत बुद्धि अर्थात जो मददगार है, प्रीत बुद्धि अर्थात जो सेवा में तत्पर है, प्रीत बुद्धि अर्थात जो शिव बाबा को वोट देने वाले हैं, जो पवित्र है, योगी है, ये प्रीत बुद्धि की निशानी। तो अगर अपवित्रता है तो ये चेकिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम, अपवित्रता का एक एक संकल्प ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। व्यर्थ इतना एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, निगेटिव इतना नहीं करता है, साधारण तो कम करता है, परंतु विकार जो देहभान का संकल्प है, जो देह को देह की तरफ आकर्षण होने का संकल्प है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये सब है क्या काम? दुख की लहर अगर जीवन में आ रही है, दुख पेन पेन महसूस हो रहा है, दर्द है, कहीं आंसू आते हैं उस दर्द के कारण, दिखते नहीं ऊपर से पर मन में आंसू आते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसे हमें ढूंढना है, जो हमको पता नहीं है अभी तक। हमारे पास अब तक जो ज्ञान अर्जित हमने किया है उसमें कुछ अभी भी कमी है। इस सब्जेक्ट के बारे में हमने जो कुछ ज्ञान लिया है, पढ़ा है, अनुभव किया है, उसमें और भी कमी है, उसको जानना है तो वो दुख मिटेगा। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपने अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, ऐसा श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। क्या कहा? श्रेष्ठ समय, संबंध, प्राप्तियां फिर नहीं मिलेगा। आज इसके ऊपर हम बुक कर सकते हैं सभी, कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं 50 जो केवल अभी मिलेगी। अभी नहीं बताओ, लिखो आज, ऐसी 50 बातें जो केवल अभी मिलती है संगम पर,
आज ही मिलेंगी
या फिर आज ही मिलनी है। 50 बातें जो केवल संगम युग पर प्राप्त की जा सकती है या केवल संगम पर हो सकती है, उदाहरण परमात्मा मिलन। अभी नहीं बताओ, देखो खुद ही लिखो, चिंतन का विषय है। एक बिंदु को पकड़ना और उसके ऊपर लिखना, लिखने से बुद्धि खुलती है। जितना हम बोल नहीं पाते उतना हम लिख पाते हैं। बोलने के लिए कहो तो 5 पॉइंट निकलेंगे, लिखने के लिए कहो तो 50, कुछ तो हो जाता है आपको जो चलने लगता है। तो लिखो किस पॉइंट के बारे में, कि ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो केवल संगम युग पर हो सकती है और किसी युग में नहीं हो सकती। तो पहले स्व परिवर्तन करो, यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता, ये पहली सीजन की पहली मुरली है। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट है, फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ, अच्छा है, आगे बढ़ रहे और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है जो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंदिर पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, अच्छा माता है, कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वह आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना, दुनिया वाले समझते हैं कि माता है कैसी है, नहीं दुनिया वाले क्या समझते हैं, अनपढ़ अबला नारी,
निर्बल
नहीं, बेसमझ बुद्धू, इनको क्या आएगा,
झांसी की रानी,
सेवक,
नहीं दुनिया वाले समझते
हैं,
नरक का द्वार,
पाव की
चप्पल, अच्छा बोलने को अच्छा नहीं लगता है। दुनिया वाले समझते हैं कि माता है, निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती है, और आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो, असंभव को संभव तो कर रहे हो ना, पवित्रता का झंडा लहराया ना, हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है, सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। तो क्या सुना विदेशियों से, क्या कहा बाबा ने, फर्स्ट फास्ट, फास्ट अर्थात तीव्र, किस किस चीज में फास्ट जाएंगे, फास्ट किस किस में जाएंगे, पुरुषार्थ में फास्ट, पुरुषार्थ में तीव्र, योग में तीव्र, सेवा में तीव्र, धारणाओं में तीव्र,
पढ़ाई में,
हाँ, संबंध निभाने में तीव्र,
पढ़ाई में,
पढ़ाई में,
रोगी को ठीक करने में,
रोगी को निरोगी बनाने में, और पुरुषार्थ में किस किस में तीव्र, पुरुषार्थ में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें फास्ट जाएंगे तीव्र जाएंगे, संस्कार परिवर्तन में तीव्र,
संस्कार मिलन,
संस्कार मिलन में तीव्र, स्व परिवर्तन में कौन कौन सी बातें, फुल स्टॉप लगाने में, अब तक जो हुआ बीती सो बीती, स्टॉप, स्टॉप कहा, स्टॉप, नो चिंतन, हो गया वो हो गया, बस अभी वो सब गया, डेड, आज का नया दिन है,
नथिंग न्यू,
नथिंग न्यू, और स्वरूप बनने में फर्स्ट, एक एक गुण का अनुभवी मूर्त बनो। कल की मुरली में था ना, केवल सुनना सुनाना नहीं, ज्ञान की गहराई में जाकर रत्नों को निकालना है अनुभव के। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता, अनुभवी कभी हिल नहीं सकता, माया की कोशिश कितनी भी करे उसे वो सफल नहीं हो सकती, माया की कोई यहाँ दाल गल नहीं सकती, चाल चल नहीं सकती। तो ये अनुभवी बनने में फर्स्ट, साइलेंस स्वरूप बनने में फर्स्ट, स्व परिवर्तन करने में फर्स्ट, धारणाओं में फर्स्ट, और जो सोचना वो करने में फर्स्ट, बाबा ने जो कहा वो तुरंत करने में फर्स्ट, बाबा ने आज की मुरली में जो कहा वो आज के आज ही कर दिखाना, शाम तक 6 बजे से पहले या 1 घंटे के अंदर, मुरली खत्म होते ही 1 घंटे के अंदर वो हो जाना चाहिए।
रास्ते की बुरी चला दे अगली बार।
नहीं, तुरंत कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से फूलों की वर्षा हो जाएगी। बाबा कहेंगे वाह क्या बात है, ऊपर से फूल बरसेंगे।
जल्दी परमात्मा पूजा में साथ में लेके जाएगा।
और कौन सी बात में फर्स्ट फास्ट,
किसी को
क्षमा करने में, शिक्षा देने में थोड़ा दूर, शिक्षा देने में नहीं, क्षमा करने में, महिमा करने में। फर्स्ट स्टेप क्षमा, सेकंड स्टेप शिक्षा, सेकंड स्टेप महिमा, थर्ड स्टेप
शिक्षा।
मुरली चली ना उस दिन। और किस बात में फर्स्ट, पढ़ाई में किस किस बात में फर्स्ट?
एग्जाम्पल
पहले पहले आप पहले मैं, इसमें फर्स्ट।
अच्छा, कोई कोई बातों में पहले आप, कोई कोई में पहले
मैं, पहले मैं।
पढ़ाई में किस में किस में फर्स्ट? चिंतन में, मनन में, मंथन में, ज्ञान के गहराई में जाने में, ज्ञान को समझ में, समझने में,
बार बार
पढ़ने में और पढ़ाने में, मुरली को बार बार अध्ययन करके नई नई बातें उसमें से निकालना,
डीप में
जाना। एक बार पढ़ने फर्स्ट रीडिंग, जैसे स्टूडेंट्स होता है ना, फर्स्ट रीडिंग करता है, फिर सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन करता है, फिर थर्ड रीडिंग में वो पॉइंट्स लिखता है, फिर फोर्थ रीडिंग में वो याद करता है, पढ़ाई करता है, और उसके बाद में वापस एक बार कुछ एग्जाम के पहले सब कुछ देखता है, तो सारी उसकी बुद्धि में होता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है? ज्ञान बुद्धि में चाहिए। फर्स्ट बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है? जिसको सब कुछ पता है, कभी भी एग्जाम आ जाए रात को उसको उठा के पूछो कि क्या था वरदान आज का, क्या था आज का स्लोगन, क्या था पिछले संडे की मुरली में। तो अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि बुद्धि में ज्ञान की टिकलू, बुलबुल क्या करे, टिकलू टिकलू करते रहे, ज्ञान की सरिता बुद्धि में बहती रहे, ताकि व्यर्थ वह आए यहां पर। ऐसा होगा तब जहां बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, नहीं तो नहीं। और तो ये सब पढ़ाई में, चिंतन में, मनन में, स्मृति स्वरूप बनने में, याद रखने में, पढ़ाई में, ज्ञान में, अच्छे से अच्छा योग, पावरफुल योग की स्थिति, योग की अनुभूति में फर्स्ट, सेवाओं में निस्वार्थ भाव, निर्माण भाव, उसमें फर्स्ट, धारणाओं में जितने गुण है तुरंत सबको एक एक का स्वरूप बनने में फर्स्ट। तो ये सब है फर्स्ट। फिर माताओं को क्या कहा बाबा ने, क्या करती है असंभव को भी संभव, और लास्ट में क्या कहा, पवित्रता का झंडा लहराया है ना, हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है, तो इस झंडे को कभी नीचे नहीं होने देना, क्योंकि ये आधार है, इस विश्वविद्यालय का आधार क्या है, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, बाकी सब में थोड़ा चलेगा पर इसमें नहीं चल सकता है। तो सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। तो बाबा ने कौन कौन सी बातें कही, एक तो खुशी की बात कही, इस संसार में सबसे कुछ नसीब आत्माएं हम है। यदि कोई अज्ञानी भी इस तरह से कहने लगे कि मैं सबसे कुछ नसीब हूं, उसके पास ज्ञान नहीं है, भगवान मिला नहीं है, पर केवल कह रहा है कि मैं इस संसार में सबसे कुछ नसीब हूं, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि वहां अवचेतन मन के सिद्धांत काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स, वो पहुंच जाएगा यहां तक और हो जाएगा, वो है नहीं पर पहुंच जाएगा यहां तक और वो हो जाएगा। तो अगर अज्ञानी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो जिनको प्राप्त है सारा भाग्य, उनकी क्या बात। तो सबसे पहली बात बाबा ने कही, इस संसार में सबसे खुश नसीब आत्मा मैं हूं। दूसरी, खुशी का आधार क्या है, आर्टिफिशियल खुशी का आधार क्या है और स्थाई खुशी का आधार क्या, रियल खुशी का आधार। फिर कहा, वो तो एक होमवर्क जो सबको करना है, कौन सा, अभी 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 क्या मिल सकता है जो किसी और युग में नहीं मिल सकता, वो होमवर्क। और ये तीसरा, फर्स्ट किस किस में जाना है, और फिर माताओं के लिए असंभव संभव करने वाले, हम भी सब असंभव को संभव करने वाले, और हाथ में क्या पकड़ा हो, पवित्रता का झंडा, इस झंडे को कभी, ये पता का सदा ऊपर हो, कभी नीचे ना है, और स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन से ही विश्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन से वायुमंडल, परिवेश और सब कुछ बदल जाएगा संसार का, स्व परिवर्तन से। अच्छा, ओम शांति। ये स्वप्न की जो बात थी, रात में भी पूछने की बात है, एक बात याद आई। जगदीश भाई ने कभी कहा है अपनी क्लास में कि एक व्यापारी था जिसका नाम था लल्लू राम। तो लल्लू राम जी दिन भर व्यापार करते थे, दिन भर कपड़ों का व्यापार, दिन भर ग्राहक, उसे कुछ याद नहीं है, खाली पैसों का चिंतन और अपने कपड़ों का चिंतन, पैसे और कपड़े, बीवी का क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, माँ का क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं दिन रात। तो एक दिन रात में सोया पड़ा है और उसके स्वप्न दिखता है कि ग्राहक आया है और मांग रहा है कपड़ा है क्या। उसने कहा है ना, अभी काट के देता हूँ। तो रात में सोते सोते ही वो जो ओढ़ा हुआ था चादर उसको ही काटने लगा और फाड़ने लगा। उसकी माँ कह रही है कि लल्लू क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ग्राहक आया है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो माता जी, अभी काट कर देता हूँ। तो उसको भी कपड़ा समझकर चादर को ही काट रहा है, फाड़ रहा है और दे रहा है। तो देखो कितनी तल्लीनता है, उसी का चिंतन दिन रात। तो रात में भी वही दिखता है, ग्राहक ही दिखते है, उसी कपड़े ही दिखता है जो हाथ में है, उसको बात भी कर रहा है मां से और काट फाड़ भी रहा है, दोनों का साथ साथ चल रहा है।
डबल सेवा।
ओम शांति।
बजेगा नहीं, बजेगा फोन मिलेगा अभी बजेगी।